بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کاریکرم کا آرمبھ ہم پوتر قرآن مجید کی تلاوت ایوم انواع سے کریں گے۔ آج آپ قرآن مجید کے سورہ اسراء کی 13، 14، 15 اور 16 آیتوں کی تلاوت اور انواع سنیں گے۔ قاری ہیں شری رفیع۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ اقْرَأْ كِتَابَكَ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ہر منشیہ کا کرم پتر ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور پرلے کے دن اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی بھانتی پرستت کریں گے کہ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے تم ہی کافی ہو۔ جو کوئی مارگ درشن پراپت کرتا ہے वह अपने लाभ के लिए करता है और जो पथ भ्रष्ट हो जाता है वो भी अपना ही नुकसान करता है और कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। और हम लोगों को उस समय तक दंड नहीं देते जब तक उनके बीच कोई रसूल न भेज दें। और जब हम किसी बस्ती को विनष्ट करने का इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के सुखभोगी लोगों को आदेश देते हैं, जब वे उसकी अवज्ञा करते हैं तो हमारी बात सिद्ध हो जाती है, फिर हम उसे बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज बुधवार है, आबान की 25, रबीउल सानी की 21 और नवंबर की 16 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे आशा की किरण और अंतिम कार्यक्रम होगा आज कल। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। अब आप सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान के विदेश मंत्री ने यूरोप को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने टकराव का रास्ता अपनाया तो ईरान भी उचित उत्तर देगा। ईरानी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के साथ सहकारिता बढ़ाने पर बल दिया है। मोहन भागवत ने एक बार फिर कहा है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के विदेश मंत्री ने IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में ईरान विरोधी प्रस्ताव पेश करने के अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के कदम की आलोचना की है और कहा है कि इन देशों को इस तरह के गैर रचनात्मक कदमों से बचना चाहिए। 2015 परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले अमेरिका और तीन यूरोपीय देशों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक के लिए ईरान विरोधी प्रस्ताव का मसौदा पेश किया है जिसकी आगामी बैठक में समीक्षा की जाएगी। अमरीका और उसके तीन यूरोपीय सहयोगी IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की हर बैठक से पहले ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की धमकी देते रहे हैं ताकि ईरान पर ज्यादा से ज्यादा सहयोग के लिए दबाव बना सकें। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ईरान ने यूरोपीय पक्ष को संदेश दे दिया है और यूरोपीय यूनियन के विदेश मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल समेत कई यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों से बात भी की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूरोप ने यह गैर सार्थक रवैया बंद नहीं किया तो ईरान इसका सख्त जवाब देगा। अमीर अब्दुल्लाहियान का कहना था कि प्रतिबंधों को हटाए जाने के लिए हम वार्ता के मार्ग को जारी रखेंगे।
राष्ट्रपति ने ईरान और वेनेजुएला के मध्य सहकारिता को दोनों राष्ट्रों के लिए लाभप्रद बताया है। वेनेजुएला से तेरह नाले वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद इब्राहिम रईसी ने आर्थिक, वैज्ञानिक, ऊर्जा आदि विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद संभावनाओं को दोनों देशों के लिए लाभदायक बताया। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने वर्चस्ववादी व्यवस्था के मुकाबले में वेनेजुएलाई राष्ट्र के प्रतिरोध की प्रशंसा करते हुए कहा कि अमरीकी सोचते हैं कि प्रतिबंध लगाकर और धमकी देकर वे दूसरे देशों को घुटने टेकने पर बाध्य कर देंगे, परंतु स्वतंत्र राष्ट्रों के प्रतिरोध ने उन्हें पीछे हटने पर विवश कर दिया और एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रतिरोध और सहयोग पश्चिम की अनुचित व वर्चस्ववादी मांग से मुकाबले का एकमात्र मार्ग है।
ईरान की रेडियो और टीवी संस्था IRIB के प्रमुख ने कहा है कि प्रेस टीवी चैनल अपने शक्तिशाली प्रतिस्पर्धियों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है और इस्लामी गणतंत्र की आवाज को दुनिया के कानों तक पहुंचा रहा है। ईरान प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक IRIB के प्रमुख पैमान जिबल्ली ने बुधवार को राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की कैबिनेट की मीटिंग के इधर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने शक्तिशाली प्रतिस्पर्धियों के बावजूद मीडिया में प्रेस टीवी अपनी जगह बनाए हुए है, लेकिन पश्चिम हमारी इस छोटी सी उपस्थिति को भी सहन नहीं कर पा रहा है। जिबल्ली का कहना था कि पश्चिम अपने अभिव्यक्ति की आजादी के दावे के विपरीत ईरान की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है और ईरानी संचार माध्यमों पर प्रतिबंध लगा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रेस टीवी कंटेंट की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय चैनलों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहा है और प्रतिबंधों के बावजूद इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज दुनिया तक पहुंचा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि IRIB वर्ल्ड सर्विस के चैनल अपने अनुभवों से लाभ उठाकर इस स्थिति का सामना करने में सक्षम है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि विविधता में एकता इस देश की सदियों पुरानी विशेषता है। हिंदुत्व का विचार ही दुनिया में ऐसा विचार है जो सभी को साथ लेने में विश्वास करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है और सभी भारतीयों का DNA एक है। उन्होंने कहा कि किसी को भी पूजा करने के तरीकों को बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं। छत्तीसगढ़ से के सरगुजा जिले के मुख्यालय अंबिकापुर में स्वयंसेवकों के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम 1925 से कह रहे हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है जो भारत को अपनी माता मानता है और मातृभूमि मानता है, जो भारत में विविधता में एकता वाली संस्कृति को जीना चाहता है, उसके लिए प्रयास करता है। वो पूजा किसी भी तरह से करे, भाषा कोई भी बोले, खान पान रीति रिवाज कोई भी हो, वो हिंदू है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुत्व ने सब विविधताओं को हजारों वर्षों से भारत की भूमि में एक साथ चलाया है, ये सत्य है और इस सत्य को बोलना है और डंके की चोट पर बोलना है। उन्होंने कहा कि संघ का काम हिंदुत्व के विचार के अनुसार व्यक्ति और राष्ट्र चरित्र का निर्माण करना और लोगों में एकता को बढ़ावा देना है। भागवत ने सभी की आस्था का सम्मान करने पर जोर दिया और दोहराया कि सभी भारतीयों का DNA एक समान है और उनके पूर्वज एक ही थे। उन्होंने कहा कि विविधता होने के बावजूद हम सभी एक जैसे हैं, हमारे पूर्वज एक ही थे। हर भारतीय जो 40,000 साल पुराने अखंड भारत का हिस्सा हैं, सभी का DNA एक है। हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया था कि हर किसी को अपनी आस्था और पूजा पद्धति पर कायम रहना चाहिए और दूसरों की आस्था और पूजा पद्धति को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि सभी के विश्वास और संस्कारों का सम्मान करें, सबको स्वीकार करें और अपने रास्ते पर चलें, अपनी इच्छा पूरी करें, लेकिन इतना स्वार्थी मत बने कि दूसरों की भलाई का ध्यान न रहे। सरसंचालक ने कहा कि हमारी संस्कृति हमें जोड़ती है, हम आपस में कितना भी लड़ लें, संकट के समय हम एक हो जाते हैं। जब देश पर किसी तरह की मुसीबत आती है तो हम साथ मिलकर लड़ते हैं। कोरोना महामारी के दौरान इससे निपटने के लिए पूरा देश एक होकर खड़ा हो गया।
एक फिलिस्तीनी जवान ने मंगलवार को 2 ज़ायोनियों की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। यह हमला वेस्ट बैंक के एरियल बस्ती में हुआ। हमले में इसराइल के 3 नागरिक घायल भी हुए हैं। इसराइल के एक सैनिक ने शहादत प्रेमी फिलिस्तीनी को उस वक्त गोली मार दी जब वो कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों के अनुसार घायल ज़ायोनियों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक है। इसराइली सेना ने बताया है कि फिलिस्तीनी हमलावर ने बस्ती के औद्योगिक क्षेत्र के प्रवेश पर ज़ायनियों पर हमला किया और फिर पास के गैस स्टेशन पहुंचा, जहां उसने और लोगों को चाकू मारा। सेना के मुताबिक सैनिक अन्य संदिग्धों की तलाश में इलाके में खोजी अभियान चला रहे हैं। इसराइली टेलीविजन पर प्रसारित वीडियो के अनुसार संदिग्ध हमलावर एक राजमार्ग पर भाग रहा है और गोली मारे जाने पर जमीन पर गिर जाता है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाद में पुष्टि की है कि 18 वर्षीय मोहम्मद सैफ की मौत हो गई।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि ट्रंप अपने पहले ही राष्ट्रपति काल के बाद डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन के मुकाबले में पिछला राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी हार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ट्रंप की घोषणा का मतलब यह है कि वो पहले अपनी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए पार्टी के भीतर ही मुकाबला करेंगे। फ्लोरिडा के मार ए लागो रिजॉर्ट में अपनी रैली से ठीक पहले उन्होंने पार्टी में अपनी उम्मीदवारी के कागज जमा करवाए हैं। रैली में लोगों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमरीका को फिर से महान और गौरवशाली बनाने के लिए आज रात मैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर रहा हूं। उन्होंने दावा किया कि अब से 2024 के चुनाव के दिन तक मैं ऐसे लड़ूंगा जैसे पहले कभी किसी ने नहीं लड़ा। हम कट्टरपंथी वाम डेमोक्रेट्स को हरा देंगे जो हमारे देश को भीतर से नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन उनके रास्ते में कई बड़ी रुकावटें हैं जिन्हें पार कर पाना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। उनके चुनाव हारने के बाद उन्होंने अपनी हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनके समर्थकों ने अमेरिकी संसद पर धावा बोल दिया था। इसके अलावा उनके खिलाफ अति खुफिया दस्तावेजों को अपने घर रखने के अलावा कई मामलों में जांच चल रही है। इनमें से किसी भी एक मामले में जुर्म साबित होने पर उनको भारी आर्थिक जुर्माने के साथ साथ जेल जाना पड़ सकता है।
अमरीकी स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर भेजे जाने वाले अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। बुधवार को यह लॉन्च तीसरी बार की कोशिश में सफल हो पाया। इससे पहले इसकी दो लॉन्चिंग नाकाम हो चुकी हैं। तकनीकी दिक्कतों की वजह से अगस्त और सितंबर की लॉन्चिंग काउंट डाउन के दौरान नाकाम रही थी। ये नासा के आर्टिमिस मिशन का हिस्सा है, जिसके तहत 50 साल बाद एक बार फिर इंसान को चांद पर भेजने की तैयारी हो रही है। ये इस रॉकेट का पहला मिशन है जिसमें कोई अंतरिक्ष यात्री सवार नहीं होगा, लेकिन अगर ये मिशन कामयाब रहता है तो भविष्य में इस रॉकेट से अंतरिक्ष यात्री मिशन पर जा सकेंगे। इस अभियान के तहत चांद की दिशा में एक एस्ट्रोनॉट कैप्सूल भेजा जाना है, यानी एक ऐसा अंतरिक्ष यान जिसमें इंसान को भेजा जा सके। ओरियन नाम के इस अंतरिक्ष यान में कोई इंसान नहीं था, लेकिन अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले मिशनों में चांद की सतह पर जाने वाले इस तरह के यान में इंसान को भेजा जा सकेगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि सब कुछ ठीक रहा तो इंसान 2024 से एक बार फिर चांद पर कदम रख सकेगा। इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम लेकर हाजिर है कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। ईरान में अशांति फैलाने में कुछ अरब देशों की भूमिका, यूक्रेन की सीमा के निकट पोलैंड में मिसाइल हमला और गुजरात के चुनाव, दोस्तों, ये है हमारी आज की चर्चा के प्रमुख विषय। कुछ अरब देश मीडिया के माध्यम से मतभेद फैलाकर ईरान की युवा पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं। एक समीक्षा के साथ उपस्थित हैं अख्तर अब्बास।
लेबनान के एक समाचार पत्र ने राज खोला है कि ईरान के अंदर युद्ध स्थानांतरित करने के लिए रियाज, अबू धाबी और वॉशिंगटन के सहयोग के बारे में दस्तावेज मौजूद है। लेबनान के अल अखबार समाचार पत्र ने दस्तावेज प्रकाशित किए हैं जो दर्शाते हैं कि कैसे यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका ने ईरान में युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए 2016 से ईरान के युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रखा है। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दावा किया था कि वो ईरान के अंदर युद्ध ले जाएंगे और उसी समय कई लोगों का मानना था कि रियाज हमेशा की तरह तेहरान के खिलाफ दाइश के तत्वों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन कुछ दस्तावेजों को हाल ही में प्रकाशित किया गया है जिनसे पता चला है कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ कुछ और ही सपना देख रहा है। लेबनान के अल अखबार समाचार पत्र ने ऐसे दस्तावेज प्रकाशित किए हैं जो बताते हैं कि ईरान को अंदर से टारगेट करने का बिन सलमान का मकसद ईरान के युवा वर्ग को प्रभावित करना और उनके सामने संयुक्त अरब इमारात जैसे अरब देशों की एक स्वप्निल छवि को पेश करना है। इस अखबार के मुताबिक जनवरी 2016 में सऊदी शासन द्वारा शेख निम्र बाकर अल निम्र की सजाए मौत के बाद नाराज ईरानी युवाओं ने सऊदी राजनयिक मिशन की इमारत में आग लगा दी थी, जिसके चार दिन बाद संयुक्त अरब इमारात ने नेशनल मीडिया काउंसिल की मदद से सऊदी अरब और बहरीन के प्रतिनिधियों की ओर से ईरान के मामले से निपटने के लिए एक मीडिया रणनीति प्रस्तुत की। उसके बाद अमरीकियों के सहयोग से यह योजना ईरान को भीतर से नष्ट करने की योजना में बदल गई। इस योजना का लक्ष्य ईरान की घरेलू और विदेशी नीति का विरोध करना था और यह रणनीति राजनीतिक आयाम पर आधारित और धार्मिक बातचीत से दूर थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रणनीति के परिणाम अगले कुछ वर्षों में निर्धारित किए जाने थे। इस योजना के अंतर्गत जिस समाज को लक्ष्य बनाया गया था उनमें सबसे पहले फारस की खाड़ी के निवासियों और क्षेत्रीय जनमत और उसके बाद ईरान के अंदर आम जनमत, विशेष रूप से ईरानी अल्पसंख्यकों और विदेशों में रह रहे विपक्षी दल शामिल थे। इमारात ने इस रणनीति के कार्यान्वयन में इस्लामी सहयोग संगठन, फारस की खाड़ी के आधिकारिक अरब संगठनों, अरब लीग और इस्लामी गणतंत्र ईरान के विपक्षी थिंक टैंकों को इस योजना को लागू करने वाले भागीदार के रूप में पेश किया। अल अखबार ने आगे लिखा कि अगला मुद्दा पश्चिमी अरब धुरी से जुड़े मीडिया का जोर था, जिसे देशों के मुद्दों में ईरान का हस्तक्षेप का नाम दिया गया। इसीलिए इन मीडिया चैनलों की जिम्मेदारी थी कि वो ईरान की सरकार और जनता के बीच मतभेद पैदा करके युवा पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित करें। इसी परिधि में उन्होंने फारस की खाड़ी के अरब देशों की स्थिति की तुलना ईरान में वंचित वर्ग से की और इस वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया। इस योजना में सामाजिक और सामरिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना था ताकि इसकी मीडिया प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके। इसीलिए उन्होंने दावा किया कि ईरान सैन्य हथियारों पर बड़ी रकम खर्च करता है लेकिन सामाजिक मुद्दों पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। इसी योजना की परिधि में तेहरान की ओर से प्रतिरोधक आंदोलनों के समर्थन के मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और यह दावा किया गया था कि ईरानी राष्ट्र के धन का उपयोग लोगों के हालत में सुधार के बजाय क्षेत्र को नष्ट, तबाह और अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है।
यूक्रेन युद्ध ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। पोलैंड में गिरने वाले मिसाइल के बारे में यूक्रेन की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। विस्तार से बता रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
पोलैंड ने ऐलान किया है कि मंगलवार को दोपहर बाद इस देश के पूर्व में एक गांव में रूसी सेना का एक मिसाइल आकर गिरा है, जिससे दो पोलैंडी नागरिकों की मौत हो गई। पश्चिमी संचार माध्यमों ने भी ये बताने का प्रयास किया है कि ये मिसाइल रूसी थी और ये दिखाने का प्रयास किया कि रूस ने नेटो के एक सदस्य देश पर हमला कर दिया है। संचार माध्यमों की इन रिपोर्टों की प्रतिक्रिया में कल रूसी प्रतिरक्षा मंत्रालय ने भी शाम को ऐलान किया कि इस मिसाइल से उसका कुछ लेना देना नहीं है। इसी प्रकार रूसी प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इसे भड़काऊ कार्रवाई बताया और बल देकर कहा है कि यूक्रेन की सीमा के निकट पोलैंड की सीमा में उसने किसी प्रकार का मिसाइल फायर नहीं किया है। कल मंगलवार को रूस ने यूक्रेन पर कई मिसाइल फायर किए थे, जिसके दृष्टिगत ये कहा जाने लगा था कि जो मिसाइल पोलैंड में गिरा है वो भी रूसी है, जबकि ये बात अब कही जा रही है कि जो मिसाइल पोलैंड में गिरा है वो रूस का नहीं बल्कि यूक्रेन का है। पोलैंड पर मिसाइल गिरने के बाद देश के राष्ट्रपति ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई और ऐलान किया है कि जो मिसाइल पोलैंड में गिरा है अभी उसके फायर करने का कारण ज्ञात नहीं है। इसी प्रकार मिसाइल मामले पर पोलैंड और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों ने एक दूसरे से टेलीफोनी वार्ता की और इस टेलीफोनी वार्ता में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि यूरोप और पूरी दुनिया की रूसी आतंकवाद से रक्षा की जानी चाहिए। ज़ेलेंस्की का बयान इस बात का सूचक है कि यूक्रेन इस विषय से अधिक लाभ उठाने की चेष्टा में है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि आरंभिक जांच इस बात की सूचक है कि धमाका रूसी मिसाइल से नहीं हुआ है, और एक दूसरे अमेरिकी अधिकारी ने भी कहा है कि यह धमाका रूसी नहीं बल्कि यूक्रेनी मिसाइल से हुआ है। कल ही पोलैंड में इस देश के विदेश मंत्रालय में रूसी राजदूत को भी तलब किया गया। डिप्लोमेटिक सूत्रों ने आज बुधवार की सुबह ऐलान किया है कि नाटो के सदस्य देशों के राजदूत आज पोलैंड में एक बैठक करेंगे जिसमें इस विषय में विचार विमर्श किया जाएगा। इससे पहले पोलैंड ने ऐलान किया था कि वो नाटो घोषणा पत्र के चौथे अनुच्छेद की समीक्षा कर रहा है। प्रतीत यह हो रहा है कि रूस यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसे गति देने और रूस पर दबाव में वृद्धि के लिए इस प्रकार की कार्रवाई अंजाम दी गई है। इसी प्रकार जानकार हलकों का मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाई का एक लक्ष्य यूक्रेन के प्रति समर्थन को अधिक करना और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पोलैंड के गांव में गिरने वाले मिसाइल के बाद इस देश के राष्ट्रपति से टेलीफोनी वार्ता में जो बात कही है उसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाली में होने वाली G20 बैठक से अलग इस मामले की समीक्षा के लिए एक आपातकाल बैठक की और कहा कि आरंभिक जांच इस बात की सूचक है कि पोलैंड में जो धमाका हुआ है वो रूसी मिसाइल से नहीं हुआ है। रोचक बात यह है कि जो बाइडेन कह रहे हैं कि यह धमाका रूसी मिसाइल से नहीं हुआ है, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति रूसी मिसाइल बता रहे हैं। बहरहाल प्रतीत यह हो रहा है कि यूक्रेन, नाटो और नाटो के सदस्य देश मिसाइल हमले से रूस पर दबाव बनाने में अधिक से अधिक लाभ उठाने की चेष्टा में हैं।
और श्रोताओं, अब रुख करते हैं हम भारत का। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने एक प्रत्याशी के अपहरण का आरोप भाजपा पर लगाया है। नई दिल्ली से शमशाद काजमी की रिपोर्ट।
गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। यहां विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के अतिरिक्त आम आदमी पार्टी भी अपनी राजनीतिक किस्मत आजमा रही है, जिसका सीधा मुकाबला उसके अनुसार पिछले 27 वर्षों से सत्ता पर विराजमान भाजपा से है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर सूरत पूर्व विधानसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी कंचन जरीवाला के अपहरण का आरोप लगाया। आज कंचन जरीवाला अपना नामांकन वापस लेने के लिए पुलिस सुरक्षा के बीच जब चुनाव अधिकारी के दफ्तर पहुंचे तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके प्रत्याशी पर अपना नामांकन वापस लेने के लिए दबाव डाला गया है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा द्वारा अपने प्रत्याशी के अपहरण का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा इतना घबरा गई है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का अपहरण कर रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि भाजपा के गुंडे जो कुछ कर रहे हैं वे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रत्याशी का नामांकन गन पॉइंट पर वापस कराया गया। आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट द्वारा अपने प्रत्याशी के कल से लापता होने का दावा किया था और भाजपा पर आरोप लगाया था कि उसने कंचन जरीवाला का नामांकन रद्द करने का प्रयास किया है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की 10वीं सूची में जरीवाला के नाम की घोषणा की थी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के बाद अब गुजरात में भी अपनी बड़ी जीत का दावा किया है। भाजपा जहां गुजरात की अपनी 27 साल पुरानी सत्ता को बचाने का प्रयास कर रही है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उसके लिए चुनौती बन रही हैं। गुजरात में इस समय सभी दलों की चुनावी सभाएं हो रही हैं, जिनमें सभी बड़े दल सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। मोरबी की दुर्घटना यद्यपि भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, वहीं भाजपा का दावा है कि गुजरात विकास के नाम पर राज्य की जनता उसे ही सत्ता सौंपेगी। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम आशा की किरण। आशा की किरण।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आपको अवश्य याद होगा कि पिछले कार्यक्रमों में हमने बताया था कि लगभग समस्त आसमानी और गैर आसमानी धर्मों में महामुक्तिदाता के आने की शुभ सूचना दी गई है और ये अलग बात है कि हर धर्म में महामुक्तिदाता की अलग अलग विशेषताएं बयान की गई हैं, परंतु लगभग हर धर्म के मानने वाले महामुक्तिदाता के आने पर एकमत हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि बौद्ध धर्म में भी महामुक्तिदाता के आने की शुभ सूचना दी गई है और कहा गया है कि महामुक्तिदाता आएगा और आने के बाद वो दुनिया से अत्याचार व अन्याय का अंत करके बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करेगा। महामुक्तिदाता के बारे में पैगम्बर इस्लाम ने जो शुभ सूचनाएं दी हैं, उसके अनुसार महामुक्तिदाता पैगम्बर इस्लाम की नस्ल से होगा। वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का बेटा होगा। उसका नाम पैगम्बर इस्लाम का नाम होगा। यद्यपि महामुक्तिदाता भी इंसान होगा, परंतु आम इंसानों से भिन्न होगा। वो समस्त सद्गुणों से सुसज्जित होगा, जैसे वो महाज्ञानी होगा, ईश्वरीय आदेशों का पूर्ण ज्ञाता होगा। इसी तरह वो बहादुर व कृपालु होगा, लोगों विशेषकर मजलूम लोगों से प्रेम करने वाला होगा। सारांश ये कि वो समस्त ईश्वरीय सद्गुणों से परिपूर्ण इंसान होगा। महामुक्तिदाता पूरी दुनिया को सुख शांति व न्याय से भर देगा। महामुक्तिदाता के आने की खबर एक ऐसी वास्तविकता है जिसकी पुष्टि बुद्धि और प्रकृति दोनों करती हैं। महामुक्तिदाता के जहूर के बाद दुनिया में इस्लामी व ईश्वरीय मूल्य अपनी परिपूर्णता का मार्ग तय करेंगे। ईश्वरीय किताब तौरात में आया है कि सच्चे लोग जमीन के वारिस होंगे, यानी महान ईश्वर सच्चे लोगों को जमीन पर अपना प्रतिनिधि बनाएगा। इसी प्रकार महान ईश्वर ने पवित्र कुरान में कहा है कि हमने जबूर में कहा है कि हमारे नेक बंदे जमीन के वारिस बनेंगे। पवित्र कुरान की इस आयत से ये बात पूरी तरह स्पष्ट है कि जमीन का वारिस नेक इंसान होगा, यानी नेक इंसान जमीन पर महान ईश्वर का प्रतिनिधि होगा। इस आयत से एक और बात स्पष्ट होती है और वो ये है कि जमीन महान ईश्वर की है। वैसे तो समूचा ब्रह्मांड और जो कुछ उसमें है सब कुछ महान ईश्वर का है, परंतु चूंकि बात जमीन की हो रही है इसलिए ईश्वर ने कहा है कि जमीन के वारिस नेक बंदे होंगे। पवित्र कुरान की इस आयत से ये बात भी स्पष्ट है कि महामुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम न केवल नेक इंसान होंगे बल्कि वो समस्त सद्गुणों से सुसज्जित होंगे। दूसरे शब्दों में वो सद्गुणों की प्रतिमूर्ति होंगे। पवित्र कुरान के सूरह कसम की पांचवी आयत में महान ईश्वर कहता है कि हम उन लोगों पर एहसान करना चाहते हैं और उन्हें जमीन का वारिस बनाना चाहते हैं जो जमीन में कमजोर कर दिए गए हैं। महान ईश्वर के आदेश से जब महामुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जहूर होगा तो अत्याचारियों और उनकी सरकारों का अंत हो जाएगा। इन आयतों के अलावा दूसरी बहुत सारी आयतें हैं जिनमें महामुक्तिदाता के आने की शुभ सूचना दी गई है। दोस्तों, एक सवाल यह है कि महामुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम के आने की प्रतीक्षा किस तरह करनी चाहिए, क्या किया जाए जिससे ये कहा जाए कि हम उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, जिनमें से एक यह है कि हम जिस महान हस्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी हमें पहचान होनी चाहिए, यानी सही पहचान के बिना प्रतीक्षा संभव नहीं है। प्रतीक्षा करने वाले को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो महामुक्तिदाता आने वाला है और जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं वो किन सद्गुणों व विशेषताओं का स्वामी है, वो किन चीजों को पसंद और नापसंद करता है। हमारी प्रतीक्षा उसकी पसंद के अनुसार होनी चाहिए। अगर कोई इंसान अपने मेहमान के आने की प्रतीक्षा कर रहा है परंतु वो न तो मेहमान को पहचानता है न ही मेहमान की इच्छा व पसंद को, तो इस प्रकार के व्यक्ति को वास्तविक प्रतीक्षक नहीं कहा जाएगा। इसी तरह अगर कोई ये जान जाए कि कोई व्यक्ति आने वाला है मगर वो आने वाले को न पहचानता हो तो वो कभी भी न आने वाले की प्रतीक्षा करेगा और न ही आना उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि सही प्रतीक्षा करने वाले बने तो सबसे पहले हमें आने वाले के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए कि वो कौन है। जो सही प्रतीक्षा करने वाला बनना चाहता है उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो आने वाला है वो कौन है, उसका मूल्य व महत्व क्या है और वो हमसे क्या चाहता है, वो क्यों आ रहा है। जो इंसान महामुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम को पहचानेगा कि वो महान ईश्वर के अंतिम प्रतिनिधि हैं, समस्त ईश्वरीय सद्गुणों से सुसज्जित हैं, उनका नाम वही है जो पैगंबर इस्लाम का था, वो उसके अंतिम उत्तराधिकारी हैं जिसे महान ईश्वर ने समूचे ब्रह्मांड के लिए दया व कृपा बनाकर भेजा था। दया व कृपा की प्रतिमूर्ति होगा, वो ज्ञान व न्याय का सूरज होगा। वो अपने ज्ञान और न्याय से पूरी दुनिया से अन्याय व अत्याचार का अंत कर देगा। वो पूरी दुनिया में चारों ओर शांति स्थापित कर देगा। कोई भी किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। हर इंसान को उसका अधिकार मिल जाएगा। कोई भी ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि मुझ पर अत्याचार हुआ है और मेरे अधिकार को छीना गया है। कोई भी अपने अधिकार से अधिक नहीं लेगा, जबकि आज की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते भी नहीं कि अपनी जरूरत से अधिक ले लेना वास्तव में दूसरों के अधिकारों का हनन है। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अमीर व धनी बनने की इच्छा व लालसा है और वे हराम व हलाल के बारे में लेश मात्र सोचते भी नहीं। उन्हें बस अमीर होने और पैसा कमाने की धुन सवार है। इस प्रकार के लोग कभी भी महामुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम के वास्तविक प्रतीक्षक नहीं बन सकते, क्योंकि महामुक्तिदाता की एक विशेषता यह है कि वो न्याय की प्रतिमूर्ति होंगे। वो अन्याय का अंत करने वाले होंगे। जो इंसान हराम ढंग से धन संचित करने की आदि है, वो दिल से कभी भी महामुक्तिदाता के आने की कामना नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि महामुक्तिदाता के आने का मतलब हराम कामों का बंद हुआ अंत है। जो इंसान वास्तव में महामुक्तिदाता के आने का इंतजार करने वाला बनना चाहता है, उसे चाहिए कि न केवल हराम काम न करे, अवैध ढंग से धन न कमाए और दूसरों का हक न मारे, बल्कि हराम कार्यों से दूरी करे। अपनी गर्दन में दूसरों के जो अधिकार हैं उसे अदा करे। अगर कोई दूसरों का हक मार रहा है तो यथासंभव उसे ऐसा करने वाले को रोकना चाहिए, मजलूम का साथ देना चाहिए। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को जुल्म व जालिम का विरोध करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति दूसरों पर अत्याचार करे, दूसरों के अधिकारों को खाए और वो जालिम व अत्याचारी का दोस्त भी हो और ये कहे कि वो महामुक्तिदाता के जोहर की प्रतीक्षा कर रहा है। अगर कोई इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो वो स्वयं को और दूसरों को धोखा दे रहा है। इस प्रकार का व्यक्ति कभी भी महामुक्तिदाता का वास्तविक प्रतीक्षक नहीं बन सकता। जिस इंसान के अंदर सभी लोगों के साथ न्याय से पेश आने की भावना तक न हो, वो महामुक्तिदाता का वास्तविक प्रतीक्षक नहीं हो सकता।
आशा की किरण। मानवता के मोक्षदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर सटीक बहस पर आधारित कार्यक्रम आशा की किरण। हर हफ्ते बुधवार को।
दोस्तों, यहाँ हम एक गुड़ बिंदु की ओर संकेत करना चाहते हैं और वो ये है कि क्या आपने कभी सोचा कि महामुक्तिदाता के शासनकाल में पूरी दुनिया में शांति ही शांति होगी, कहीं कोई अशांति नहीं होगी। उसका कारण क्या है? उसके जवाब में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, पर उन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात न्याय है। शांति की असली वजह न्याय है। जब सबको सबका अधिकार मिल जाएगा तो अशांत की वजह ही खत्म हो जाएगी। महामुक्तिदाता के शासनकाल में लोग न केवल दूसरों के अधिकारों को नहीं खाएंगे, बल्कि दूसरों के अधिकारों को उन तक पहुंचाने के लिए लोगों को ढूंढेंगे। जो इंसान महामुक्तिदाता का सच्चा प्रतीक्षक बनना चाहता है, उसकी एक जिम्मेदारी यह है कि वो दूसरों को भी बताए कि आने वाला किन विशेषताओं का स्वामी है। वो पूरी दुनिया को उस तरह से न्याय से भर देगा जिस तरह से वो अन्याय व अत्याचार से भरी होगी। यानी वो दूसरों को भी न्याय से काम लेना और अत्याचार से दूरी करना सिखाए। वो समाज में अच्छाई का प्रचार प्रसार करे, बुराई को रोकने वाला बने। उसके अमल और कार्य इस बात की गवाही दें कि वो किसी की प्रतीक्षा कर रहा है और किसी के आने की भूमिका प्रशस्त कर रहा है। आज भी समाज में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के अधिकारों को न खाने की भावना रखते हों। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरों पर अत्याचार करने से पीड़े का आभास करते हैं। आज समाज में बहुत से लोग दूसरों को भलाई व अच्छाई का आदेश देते हैं, परंतु उनकी बातों का कोई विशेष प्रभाव व असर नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि जो लोग दूसरों को उपदेश देते हैं, वे मात्र जबानी उपदेश देते हैं। इस प्रकार के लोगों के जबानी उपदेश लोगों के केवल कानों तक पहुंचते हैं, मगर जो उपदेश दिल से दिए जाते हैं उनका असर भी लोगों के दिल पर होता है। इमाम जैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो व्यक्ति महामुक्तिदाता की खैबत के काल में हम अहले बैत की दोस्ती पर जमावा बना रहे, उसे जंगे बद्र और जंगे उहद में 1,000 शहीदों का प्रतिदान दिया जाएगा। ये बहुत मूल्यवान हदीस है। इस जमाने में अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और दोस्ती पर बाकी रहना भी कमाल है और उसका बहुत अधिक प्रतिफल है। पैगम्बर इस्लाम और उनके पवित्र परिजनों की मोहब्बत वो नेकी व अच्छाई है जिसे कोई बुराई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसका अर्थ यह है कि जिसके दिल में जितनी अहले बैत की मोहब्बत होगी, उनसे जितना सच्चा प्रेम होगा, उतना ही वो बुराइयों और गुनाहों से दूर रहेगा। और महान ईश्वर ने पवित्र कुरान में उन लोगों को शुभ सूचना दी है जिन्होंने स्वयं को पवित्र कर लिया। और कोई व्यक्ति अहले बैत की मोहब्बत के बिना न तो पवित्र हो सकता है और न ही महामुक्तिदाता के इंतजार का वास्तविक प्रतीक्षक बन सकता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम की समाप्ति से पहले महान ईश्वर से दुआ है कि हम सब का शुमार महामुक्तिदाता के वास्तविक प्रतीक्षक में करें।
प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम आजकल।
आजकल दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज हम ईरान में होने वाले हालिया परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे। अख्तर रिज़वी और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आज हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस्लामी व्यवस्था में महिलाओं का स्थान क्या है और महिलाओं को इस्लामी शिक्षाओं में किस दृष्टि से देखा जाता है। इस्लाम समस्त ईश्वरीय धर्मों में सबसे परिपूर्ण धर्म है। अन्य ईश्वरीय धर्मों की तुलना में इस्लाम महिलाओं के अधिकारों का अधिक समर्थन करता है व महिलाओं के लिए आज़ादी का पक्षधर है। ईश्वरीय दूत भी अपने काल में स्वतंत्रता पूर्ण जीवन के समर्थक रहे हैं।
पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस समाज में आए थे उनमें मानवीय और नैतिक मूल्य मर चुके थे। ये वजह है कि उस अंधकारमय काल के लोगों को जाहिल कहा जाता था। इसका कारण यह है कि वे किसी भी प्रकार के नैतिक या मानवीय मूल्यों का सम्मान नहीं करते थे, बल्कि वे ये सब भुला बैठे थे। उनकी दृष्टि में महिलाओं का कोई महत्व नहीं था, वे महिलाओं को महत्वहीन जानते थे। अंधकारमय काल के अरब महिलाओं को बहुत ही गिरा हुआ समझते थे और उनके लिए जिंदगी के भी कायल नहीं थे। एक प्रकार से वे लोग महिलाओं को केवल बच्चों को जन्म देने वाली मशीन के रूप में देखते थे। ये बहुत बुरी बात थी कि लड़की के जन्म के बाद वो उसको दफना दिया करते थे।
जब इस्लाम का उदय हुआ तो उसने इन कुरीतियों का खुलकर विरोध किया। पैगंबर इस्लाम ने महिलाओं की आज़ादी की बात की, उन्होंने उनको उनके अधिकार दिलवाए। पैगंबर इस्लाम अपनी सुपुत्री हजरते फातिमा जहरा को बहुत चाहते थे। वे उनका विशेष सम्मान करते थे और उनके सम्मान में उठ खड़े होते थे। अपने इस काल में उन्होंने दूसरों तक बेटियों और महिलाओं के महत्व को पेश किया है। अपने अलग अलग संबोधनों में पैगंबर इस्लाम ने महिलाओं के अधिकारों और उनके महत्व के बारे में बात की है। अपने काल के लोगों की बंदी वे कभी भी महिलाओं को गिरी नजर से नहीं देखते थे।
पैगंबर इस्लाम के काल में बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। इसीलिए जब भी वे अपनी सुपुत्री हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा से प्यार करते थे तो उस काल में अरब ये देखकर बहुत ही आश्चर्य करते थे। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात मशहूर है कि वे जब
किसी भी यात्रा पर जाते थे तो अपनी बेटी से अवश्य मिलते थे और उनसे विदा लेकर अपनी यात्रा आरंभ करते थे। वे जब अपनी यात्रा से वापस आते थे तो सबसे पहले अपनी सुपुत्री से मिलने जाते थे। ये बातें बताती हैं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को कितना चाहते थे और महिलाओं के लिए वे उनके अधिकारों का समर्थन करते थे।
आपके विभिन्न कथनों में महिलाओं के साथ विनम्रता पूर्ण व्यवहार पर बल दिया गया है। उनका कहना था कि जो भी यह चाहता है कि वह मुझको और मेरे परिजनों को प्यार करे, उसको चाहिए कि वह अपने बीवी बच्चों के साथ मेहरबानी से पेश आए। इसके मुकाबले में आप महिलाओं के साथ हर प्रकार के दुर्व्यवहार की निंदा करते थे। पैगंबर इस्लाम का कथन है कि मेरी उम्मत में अच्छा आदमी वह है जो अपने परिवार वालों के साथ कड़ाई और सख्ती न करता हो। वैसे तो दुनिया का हर धर्म मां के लिए विशेष सम्मान और अधिकार का पक्षधर है, किंतु इस्लाम इस संबंध में बहुत अधिक ध्यान देता है। जितना महत्व इस्लाम ने मां को दिया है, शायद ही किसी अन्य धर्म ने ऐसा किया हो।
इस्लाम धर्म ने मां के लिए विशेष अधिकार निर्धारित किए हैं। मां को विशेष अधिकार दिए जाने का कारण यह है कि वही बच्चों का सही प्रशिक्षण करके समाज को अच्छे और होनहार लोग देती है। जिस समाज में जितने भी होनहार और योग्य लोग होंगे वो उसी अनुपात में प्रगति करेगा। इस्लाम की नज़र में माँ का महत्व कितना अधिक है, इसको पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कथन से समझा जा सकता है जिसमें आप फरमाते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पवित्र परिजनों के अतिरिक्त इस्लामी महापुरुषों के भी महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के बारे में बहुत अधिक कथन पाए जाते हैं।
इस्लामी समाज में महिलाओं को जितना महत्व प्राप्त है उतना सम्मान को पश्चिमी समाज में हासिल नहीं है। यही कारण है कि वे इस बात को छिपाने के प्रयास करते रहते हैं और इस ओर से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पश्चिम पूरी दुनिया में इस बात को प्रसारित करता है कि इस्लामी व्यवस्था में महिलाओं को आज़ादी नहीं है और वहां पर महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जाता है। पश्चिमी समाजों में महिलाओं को सम्मान देने के स्थान पर उनको वस्तुओं को बेचने के उद्देश्य से एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से वे न केवल यह कि महिलाओं को आज़ादी नहीं देते बल्कि उनका शोषण करते हैं, साथ भी इस काम से पश्चिम विश्व में नग्नता का प्रसार करते हैं।
पश्चिम की आधुनिक सभ्यता भौतिकवाद पर आधारित है। इस सभ्यता में इंसान के लिए कोई सीमा नहीं है, वो बेरोक टोक सब कुछ करने के लिए आज़ाद है। इसीलिए इसमें कोई अंतर नहीं है कि वे बातें नैतिक हों या धार्मिक। स्वाभाविक सी बात है कि जब इस प्रकार की तथाकथित आज़ादी मानवीय महत्व को घटा रही है, मानवीयता में जब हवस होता है तो वो गिरकर पशुओं की सूची में आ जाता है। ये विचार किसी भी हालत में मानवीय उच्चता और उसकी परिपूर्णता तक नहीं पहुंच सकता बल्कि उसके विपरीत सिद्ध होता है, अर्थात पतन के गर्त में खींच ले जाएगा। हालांकि इस्लाम के नियम एकेश्वरवाद और नैतिकता पर आधारित हैं।
इस्लाम की दृष्टि में आज़ादी की भी एक सीमा है। इस्लाम में मनमानी को आज़ादी नहीं कहा गया है जैसा कि पश्चिम में कहा जाता है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि जिसके मन में जो कुछ आए वह वही करने लगे, बल्कि इसकी कुछ सीमाएं हैं। महिलाओं के अधिकारों के समर्थन पर आधारित पश्चिम का नारा एक झूठा नारा है जिसके माध्यम से दुनिया को धोखा दिया जा रहा है। जब उन्होंने देखा कि ईरानी महिलाओं के हिजाब के साथ हर क्षेत्र में तरक्की कर ली है तो वे पर्दे के विरुद्ध दुष्प्रचार करने लगे। अमेरिका और ज़ायोनी शासन जब ईरान का मुकाबला करने में अक्षम दिखाई देने लगे तो उन्होंने ईरान के विरुद्ध दूसरे ढंग से दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया।
ईरानी जनता ने दुश्मन की चालों को समझते हुए अपना काम किया और शत्रु को निराश कर दिया।
इस समय में लोग जो इस्लामी गणतंत्र ईरान का विरोध कर रहे हैं और जो महिलाओं के अधिकारों को हथकंडे के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, वे इस बात का आभास कराना चाहते हैं कि मानो इस्लाम में महिलाओं को कोई महत्व ही नहीं दिया गया है। इस्लाम महिलाओं को महत्वहीन समझता है, इसीलिए उन्होंने महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता के मुद्दों को उठाया है। हालांकि इस्लाम में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसी भी प्रकार की वरीयता को पेश नहीं किया गया है।
इस्लामी शिक्षाओं के हिसाब से महिलाएं भी पुरुषों की ही भांति मानवीय विशेषताओं से संपन्न हैं। मानवीय विशेषताओं की दृष्टि से महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि शारीरिक दृष्टि से महिलाओं और पुरुषों के बीच कुछ अंतर पाया जाता है, जिसको ईश्वर ने पीढ़ियों या नस्लों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया है। महिला और पुरुष में से कोई भी अकेले नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकता, जबकि दोनों मिलकर इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। पवित्र कुरान ने महिला और पुरुष के बीच पाए जाने वाले शारीरिक मतभेद के कारण का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह नस्ल को आगे बढ़ाने और सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए है। पवित्र कुरान के अनुसार महिलाओं और पुरुषों में से जो भी ईश्वर से अधिक डरता है वही उसके निकट सम्मानीय है।
या दोस्तों, महिलाओं के बारे में पश्चिम में जो सोच पाई जाती है वो इस्लाम से बिल्कुल अलग और उसके विपरीत है। पश्चिम के बहुत से विख्यात दार्शनिक एवं विद्वान महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले में तुच्छ बताते हैं। ये वे लोग हैं जिनकी सोच और रचनाओं ने पश्चिम को प्रभावित किया है। वे कोई आम इंसान नहीं है बल्कि पश्चिमी समाज के चिंतक और ख्याति प्राप्त इंसान थे, मगर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में तुच्छ ही समझते थे। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। श्रोताओं, ताजा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। तो इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Thank you.